Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Adhyay 13 Shlok Sankhya Payar Sankhya 24 तो रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम ये चर्चा कर रहे हैं। ताहर सम्मति लया भक्ति सुख देते रथे चढ़े बाहर हैल विहार करेते ताहर सम्मति लया भक्ति सुख देते रथे चढ़े बाहर हैल विहार करेते ताहर सम्मति लया भक्ति सुख देते रथे चढ़े बाहर हैल विहार करेते शब्दार्थ ताहर सम्मति उनकी आज्ञा लया लेकर भक्ते भक्तों को सुख देते सुख देने के लिए रथ चढ़ी रथ पर चढ़कर बाहर हैला बाहर आए विहार करते लीला करने अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद ध्यान से सुनिए। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए तात्पर्य इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिनों तक एकांत में रहे तो भी भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान दो प्रकार से भोग करते हैं स्वकीय तथा परकीय। स्वकीय रस में भगवान का माधुर्य प्रेम द्वारका के विधि विधानों को दर्शाता है जहाँ भगवान की कई रानियां हैं किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपनी विवाहिता पत्नियों के साथ न होकर गोपियों के साथ होता है। गोपियों के साथ ये माधुर्य प्रेम परकीय रस कहलाता है। भगवान जगन्नाथ उस एकांत स्थान को छोड़ देते हैं जहाँ वे महालक्ष्मी के साथ स्वकीय रस का भोग करते हैं। अब वृंदावन चले जाते हैं जहाँ वे परकीय रस का भोग करते हैं। अतएव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें याद दिलाते हैं कि परकीय रस में भगवान को स्वकीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। भौतिक जगत में अविवाहिता कुमारियों के साथ प्रेम व्यवहार अर्थात परकीय रस अत्यंत अधम संबंध माना जाता है किंतु आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के प्रेम व्यवहार को परम आनंद माना जाता है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है और वो प्रतिबिंब भी उल्टा या विकृत होता है। हम भौतिक जगत के अपने अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक जगत के व्यवहारों को नहीं समझ सकते इसलिए लौकिक विद्वान तथा शब्द तोड़ने मरोड़ने वाले लोग गोपियों के साथ के प्रेम व्यवहार को गलत समझते हैं। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की चर्चा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो भक्ति में अत्यंत उन्नत हो। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की तुलना भौतिक जगत के परकीय रस से नहीं की जा सकती। पहला सोने के तुल्य है और दूसरा लोहे के समान है। दोनों में इतना अधिक अंतर होता है कि वास्तव में उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती किंतु जिस प्रकार एक जानकार व्यक्ति लोहे और सोने का अंतर समझ सकता है उसी प्रकार जिसे समुचित अनुभूति होती है वह आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों से और भौतिक जगत के कार्यकलापों में सरलता से अंतर बता सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताहार सम्मति लया भक्त सुख दिते रथे छड़ी बाहिर हैल विहार करिते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आ गए। कौन बाहर आ गए? भगवान जगन्नाथ देव। तो आज का जो दिन है ये विशेष है। आप सब परिचित है कि आज जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा महारानी रथ पर सवार होकर अपना जो श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी में उसमें से बाहर आते हैं। तो इसी ये जो लीला है जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, पूरे एक अध्याय में बहुत लंबा वर्णन है। तो हम प्रयास करेंगे कि उसका यथोचित वर्णन करें। तो अलग अलग शास्त्रों में भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है उससे हम परिचित होते हैं। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि विष्णु पुराण और पद्म पुराण में रथ यात्रा का वर्णन आता है और जिसमें कहा गया है आषाढ़स्य द्वितीयायां रथ कुर्यात् विशेषतः आषाढ़ शुक्ल एकादश्यां जप होम महोत्सवम। तो वहाँ उन पुराणों का उद्धरण देते हुए ये वर्णन किया गया है कि आषाढ़ की जो द्वितीया है उस दिन ये विशेष महोत्सव भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु व्यक्ति को मनाना चाहिए। भगवान अपने मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं और फिर दूसरे लाइन में वर्णन आता है आषाढ़ शुक्ल एकादशा। और जब तक भगवान जा रहे हैं और फिर एकादशी के दिन फिर भगवान वापस आते हैं अपने मंदिर, तो भक्तों को अधिक से अधिक जप होम महोत्सव नाम संकीर्तन आदि करना चाहिए और फिर रथ स्थितम रजंतम तम महावेदी महोत्सवे यह पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरे पदे। तो वहां कहते हैं कि कोई व्यक्ति या भक्त भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी में आज के दिन रथ पर सवार होकर सवार हुए हैं ये देखकर हृदय में आनंदित हो जाता है। इतना ही उसके लिए काफी है भगवान हरि का जो धाम है उसको प्राप्त करने के लिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को ये जो पढ़ के एक भक्त ने पूछा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के बारे में वर्णन आता है तब दर्शनात् मुक्ति, कोई व्यक्ति जगन्नाथ का दर्शन करता है रथ पर सवार है तो देखने मात्र से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद क्या ये संभव है देखने मात्र से मुक्त होना? प्रभुपाद ने कहा निश्चय। प्रभुपाद ने क्या? निश्चित रूप से व्यक्ति उसी क्षण मुक्त हो जाता है, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं यदि वो उस रथ यात्रा को सीरियसली ले तो, मतलब फिर से मुक्त हो गया उसी क्षण, लेकिन रथ यात्रा से वापस आकर फिर से
पाप कार्यों में लिप्त हो जाता है एक हाथी के भांति। हाथी जाकर स्नान करता है जल में और तट पर आकर मिट्टी अपने शरीर पर डाल देता है। तो प्रभुपाद ने कहा फिर उसकी मुक्ति संभव नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उस रथ यात्रा को भगवान के दर्शन को क्या करना होगा, एक भक्त को सीरियसली स्वीकार करना होगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रतिज्ञातम द्विजोत्तमः नात श्रेय प्रदो विष्णुर उत्सवा शास्त्र सम्मतः। तो वहां इन पुराणों में आचार्य गण कहते हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि भगवान जगन्नाथ का ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये सारे उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ये ऐसा उत्सव मनाने के लिए एक भक्त को सदैव तत्पर होना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि हर आचार्य ने ये जगन्नाथ रथ यात्रा को सीरियसली लिया है। जैसे हम देखते इवन आचार्य क्या साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा उत्सव को सबसे सीरियसली लिया है। बल्कि महाप्रभु इस रथ यात्रा उत्सव में स्वयं हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर होते थे, भक्तों को एनकरेज करते थे और स्वयं ही ऑर्गेनाइज करते थे इस रथ यात्रा को। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं कि एक भक्त के लिए ये जो रथ यात्रा है जहां जगन्नाथ देव अपने श्री मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं उसमें भाग लेना, उसका दर्शन करना या उनके सामने नृत्य करना कितना महत्वपूर्ण है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की कि हमें क्या करना चाहिए। वो 1934 में जगन्नाथपुरी में अलालनाथ है वहां प्रवचन दे रहे थे। तो उस प्रवचन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि बल्कि हमें जगन्नाथ को एरोप्लेन के रथ पर ले जाना चाहिए, नीचे वाले रथ पर नहीं, कहा एरोप्लेन के रथ पर लेके जाना चाहिए पाश्चात्य जगत में, पूर्व की देशों में और लंदन आदि में ले जाना चाहिए। और उनको वहां ले जाकर जब हम रथ यात्रा मनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, अलालनाथ, गौड़ियानाथ और गोपीनाथ, ये तीनों नाथ क्या होंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं पाश्चात्य जगत में अवतरित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और बल्कि पाश्चात्य जगत में या हर देश में, उस समय कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि हर देश के हर कोने में हमें चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना के बिना इस संसार में कोई भी चीज शुभ नहीं हो सकती। वास्तव में जीवों के मंगल के लिए चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना करना और चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये वास्तव में लोक मंगलम है। इवन प्रभुपाद को देखो, अभी छोटे से बालक ही नहीं थे तो अपने पिता के पीछे लग गए हाथ धोकर। उन्होंने कहा अभी रथ यात्रा आ गई है, मुझे क्या चाहिए, रथ चाहिए। अभी गौर मोहंडे इतने कुछ धनवान तो नहीं थे कि उनको बड़ा ऐश्वर्यवान रथ प्रदान करें, तो उन्होंने सोचा चलो छोटा सा बच्चा है कुछ छोटा सा रथ दे देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अभय ने कहा मुझे तो वैसा रथ चाहिए जैसा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का होता है। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आज के दिन भगवान जगन्नाथ तो अपने रथ पर आते हैं लेकिन उनके आगे बड़े छोटे छोटे रथ भी चलते हैं। हर जो जगन्नाथपुरी के फैमिलीज हैं या गलियों के लोग हैं वो भी अपना एक रथ बनाते 5 फुट हाइट का और सारे बच्चे परिवार के लोग मिलके उस रथ के आगे कई दूर खींचते रहते हैं। और उसका जो डिजाइन है, कपड़ा है, फ्लैग्स है, श्रृंगार आदि है, वो सब उसी रथ के समान है, बिल्कुल उसी की ही प्रतिकृति। तो उसी प्रकार से अभय जो प्रभुपाद छोटे ही थे उन्होंने कहा मुझे तो रथ चाहिए तो जगन्नाथपुरी के जैसा ही। अभी इन्होंने सोचा कहां से लाए, इसके लिए तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो उस समय एक बूढ़ी माता जी वहां पड़ोस में ही थी, उन्होंने कहा मेरे पास एक पुराना रथ है और वो बिल्कुल जगन्नाथपुरी जैसा ही है। हाँ, तो फिर वो दे देती है, गवर्नमेंट है, उसको ठीक करते हैं, पेंट करवाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं, रेशमी वस्त्र आदि लगाते हैं और वो दिया जाता है। तो प्रभुपाद और उनकी सिस्टर भवतारिणी, बहुत नहीं भूल गया उनका नाम, हाँ भवतारिणी, तो भवतारिणी और वो बहुत आनंदित हो जाते हैं और फिर वो रथ यात्रा मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल वैसे होता है, प्रभुपाद अपने गले में अभय चरण छोटे से, हाँ, वो अपने गले में मृदंग आदि डालकर कीर्तन करते हुए, अपने जो मित्रगण है सबके साथ वो रथ यात्रा अपने घर के आसपास मनाते हैं और ये फेस्टिवल 9 दिन चलता है और पड़ोस के आसपास के लोग उस दिन कई सारे व्यंजन बनाते हैं, रथ यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो ऐसी जब ये रथ यात्रा हुई छोटी, तो प्रभुपाद के जो पिता थे गौर मोहनडे, उनके मित्रगण कहने लगे, अरे गौर मोहनडे, आपने इतना बड़ा उत्सव मनाया और हमें आमंत्रित नहीं किया। सुनने के तो बच्चों की रथ यात्रा थी, तो प्रभुपाद ने बचपन से ही इस रथ यात्रा को बहुत गंभीरता से लिया, जैसे महाप्रभु ने लिया था, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लिया था। और प्रभुपाद रोज रोज क्या बल्कि अधिकतर रूप में रेलवे स्टेशन जाते थे हावड़ा, और वहां हमेशा देखते थे कौन सी ट्रेन वृंदावन जा रही है, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है। 4 रुपए किराया होता था उस समय, जाना तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो लालसा उनके हृदय में थी, जगन्नाथपुरी जाना है, वृंदावन जाना है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो भविष्यवाणी थी उसको, प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए और 1967 में प्रभुपाद ने पहला रथ यात्रा महोत्सव मनाया सैन फ्रांसिस्को में। जैसे उनको वो जगन्नाथ जी प्राप्त हुए हैं, श्याम सुंदर प्रभु की जो पत्नी है मालती देवी से छोटे छोटे डॉल्स, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो जैसे ही मिले तो प्रभुपाद ने कहा आप में से कोई है जो इनको कार्य कर सकता है और बड़े बड़े विग्रह बना सकता है। तो मालती माता जी के जो हस्बैंड है श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि मैं कर सकता हूं। तो वास्तव में जगन्नाथ का एक प्रकार से प्राकट्य इस्कॉन में हुआ उस समय, और फिर उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को कुछ लकड़िया और एक रूम दिया गया, उसके अंदर वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाने में लग गए। अभी हिप्पी थे, अभी माला थोड़ा बहुत करते होंगे, तो लेकिन वो सिगरेट पीते रहते थे, बीच बीच में ड्यूटीज को कार्य करते थे और बीच बीच में सिगरेट फूंकते रहते थे। तो एक बार प्रभुपाद गए देखने के लिए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है विग्रह के निर्माण का। अभी उनको इतना पता नहीं था कि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जैसे रूम में गए तो देखा कि बलराम के ऊपर उन्होंने अपना सिगरेट एश ट्रे बनाया है, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो प्रभुपाद ने डांटा नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने उनको प्रेम से समझाया। और फिर वही श्याम सुंदर प्रभु ने वास्तव में वो जो रथ यात्रा है पहले सैन फ्रांसिस्को की, वो उन्होंने अपने सारे भक्तों के संग में मनाई। और प्रभुपाद ने कहा रथ यात्रा मनाओ, कोई आवश्यकता नहीं कि वैसा ही रथ हो। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि एक ऐसा ट्रक है जो पीछे से खुला हुआ है, क्या हम ट्रक के ऊपर भगवान को रख के रथ यात्रा मना सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा मना सकते हो। प्रभुपाद नहीं थे उस रथ यात्रा में, प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभुपाद दूर एक स्थान में निवास कर रहे थे। और फिर इन भक्तों ने तैयारियां की, प्रभुपाद ने कहा भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर होने चाहिए और कीर्तन आदि होना चाहिए और असीमित मात्रा में प्रसादम का वितरण होना चाहिए। तो इन भक्तों को तो प्रसादम मीन्स चपातियां पता थी, तो सारी माताएं रात भर लगी पड़ी, इतनी सारी चपातियां बनाई उन्होंने और दूसरे दिन प्रसादम के रूप में क्या बांटा जा रहा था, चपातियां पूरे रोड में। और कई हिप्पीज तो रास्ते में गांजा और कई चीजें भी बांट रहे थे। तो लेकिन इस प्रकार से यह रथ पहुंच गया आखिरी में एक समंदर के किनारे में। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो उस विदेशों में गुंडचा मंदिर सी बीच है, वहां सारे रथ यात्राओं का समापन कहां होता है, सी बीच पर होता है। तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा मनाई गई और श्याम सुंदर प्रभु ड्राइव कर रहे थे और वो अपना कुत्ते को भी उसके साथ रखे हुए थे। हाँ, वो लिखते हैं पहले रथ यात्रा का वर्णन करते हुए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत आनंदित हुए हैं और प्रभुपाद ने कहा आप सब चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने इस रथ यात्रा का रथ यात्रा उत्सव को सब तक पहुंचाया, हर 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 देश में पहुंचाया, हर व्यक्ति तक पहुंचाया। तो कृष्णदास कविराज ने इस रथ यात्रा महोत्सव का वर्णन मध्य लीला की इस 13वें अध्याय में बहुत अद्भुत रूप से किया है। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा मनाई। कृष्णदास कविराज उस अध्याय की शुरुआत करते हुए लिखते हैं अरदिन महाप्रभु हया सावधान रात्रि उठी गण संगे कैल प्रात स्नान। तो कृष्णदास कविराज कहते कि जिस दिन रथ यात्रा का दिन था उसके ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही चैतन्य महाप्रभु उठ गए अपने भक्तों के संग में और उन्होंने बहुत ही सावधानी के साथ स्नान आदि किया और अपने सारे भक्तों को लेकर अद्वैत आचार्य रामानंद राय स्वरूप दामोदर परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती आदि नित्यानंद प्रभु इन गोविंद काशेश्वर इन सबको लेकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए तीव्रता से। क्यों? क्योंकि एक विशेष उत्सव भगवान रथ पर बैठने से पहले होता है जिसको कहते हैं पांडु विजय। पांडु विजय देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना गंभीरा छोड़ा और जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए। पांडु विजय वो फेस्टिवल है कई हजारों कई साल पहले एक दक्षिण भारत जिसे द्रविड़ देश कहते हैं वहां के राजा थे पांड्या विजय जिनके मंत्री थे देव शर्मा जिनके कारण उस राजा ने सनातन धर्म की स्थापना की थी और उन्हीं के कारण वास्तव में ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में शुरू हुई है लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी में सर्वप्रथम रथ के ऊपर बिठाया गया इस पांड्या जो किंग थे उनके द्वारा भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा को और फिर उनको खींचा गया और खींचकर गुंडीचा तक ले जाया गया और फिर समय के बाद वापस उन्हें श्री मंदिर में लाया गया। तो जब भगवान निकलते अपने गर्भगृह से सिंहासन से बाहर रथ के ऊपर चढ़ने के लिए वो विशेष उत्सव होता है जिसको देखने के लिए राजा प्रताप रुद्र स्वयं जाते थे और महाप्रभु हमेशा उसको देखा करते थे। उसमें विशेषता क्या थी कि भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन को छोड़ते हैं और बाहर आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जगन्नाथ के जो दयिताज है बलिष्ठ पंडा है जो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं कोई नीचे से भगवान को उठाते हैं उनके चरणों को पकड़कर और कोई उनके भुजाओं को पकड़कर उठाते हैं और बाकी लोग भगवान जगन्नाथ को बीच में पीठ में रेशम की बड़ी रस्सी बांधते हैं और उनको खींचते हैं। तो ये आप जगन्नाथ पुरी में जाते हो आज के दिन तो ये आप देख सकते हो सरलता से। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं, बाहर आते आते उठाया जाता है उनको और फिर एक जगह रखा जाता है, फिर उठाया जाता है रखा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ उस समय चलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि ये कोई शराबी व्यक्ति है, मतलब उनकी वैसे आंखें ऐसी भरी होती है और ऐसे डोलते मोलते हुए निकलते हैं और बलिष्ठ पंडाज उनको पकड़ते हैं। कोई शराबी है वो गिर सकता है इसलिए उसको पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही जगन्नाथ को पकड़ के ले जाते हैं और एक गद्दा होता है हर स्थान में जो रुई का जिसके ऊपर जगन्नाथ को रखते हैं। तो जैसे ही रखते थे रुई के गद्दे पर वो रुई का गद्दा तुरंत फट जाता था और बहुत जोर से प्रचंड आवाज ध्वनि हो जाती थी। वो ध्वनि महाप्रभु सुनते थे बहुत आनंदित हो जाते थे। महाप्रभु चिल्लाते थे वो कहते थे उड़िया शब्द मनीमा मनीमा, मतलब कोई रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है उसका एक आदर सूचक शब्द है। महाप्रभु कहा करते थे मनीमा मनीमा। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जैसे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे जगन्नाथ एक प्रकार की शराब पीकर बाहर निकलते हैं जगन्नाथ मंदिर से। और वो शराब कौन सी है? राधा रस मदिरा। राधा रानी का स्मरण उनको अत्यधिक हो जाता है तो उनको महालक्ष्मी का संग जगन्नाथ मंदिर में भाता नहीं है। इसी कारण से क्या करते हैं, महालक्ष्मी को हाथ जोड़ते हैं, तार सम्मति लया भक्त सुख देते, ऐसे महालक्ष्मी का आज्ञा लेते हैं और जगन्नाथ देव क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। किसको आनंद देने के लिए? भक्त सुख देते। और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी है। वास्तव में ये रथ यात्रा फेस्टिवल श्रीमती राधा रानी का आनंद उत्सव है जो भगवान जगन्नाथ या कृष्ण उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। और इसी चीज को इस पांडु विजय फेस्टिवल में भगवान कैसे पियक्कड़ व्यक्ति के भांति बाहर निकलते हैं, इसका वर्णन सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में एक विशेष लीला से करते हैं। वहां वर्णन आता है कि ऐसी लीला जो सनातन गोस्वामी ने वर्णन की जो किसी ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती है, परंतु भगवान की कई सारी लीलाएं आवश्यक नहीं है कि किसी ग्रंथों में प्राप्त हो जो व्यास देव के द्वारा प्रदत्त है, बल्कि भक्तों के हृदय से भगवान अपनी लीलाओं को कई बार प्रकट कराते हैं। इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी के हृदय से भगवान एक विशेष लीला को प्राकट्य करते हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ बाहर निकलते हैं। और उसमें ये भी वो बताते हैं कि भगवान कई जो रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो वास्तव में वृंदावन भगवान जब पहुंचते हैं तब उसका प्राकट्य हुआ था। एक प्राकट्य तो हमने उस दिन सुना कि भगवान का प्राकट्य इस रूप में कहा हुआ था, द्वारका में। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में निवास कर रहे थे तो वो जब सोते थे, स्वप्न देखते थे, चलते थे, तो भी वृंदावन वासियों के स्मरण में वो मग्न रहा करते थे। और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का स्मरण उनको अत्यधिक था। ऐसी श्रीमती राधा रानी जब वृंदावन में निवास करती हैं तो वो कृष्ण का वियोग अत्यधिक रूप से अनुभव करती हैं। श्रीमती राधा रानी कहती है क्वा कृष्ण नंद कुल चंद्रमा, कि वो कृष्ण कहां चले गए जो नंद महाराज के कुल के चंद्रमा है, वो कृष्ण कहां चले गए जो अब बंसी वट में खड़े रहकर मुरली का वादन करके हमें आकृष्ट करते हैं, वो कृष्ण कहां चले गए जो रास लीला का आयोजन करते हैं, वो कृष्ण कहां चले गए जो अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी भी वृंदावन में कृष्ण का वियोग अनुभव करती हैं और उसी वियोग को कृष्ण द्वारका में अनुभव करते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण द्वारका में राधा भावना भावित है, हमें कृष्ण भावना भावित होना है, लेकिन वहां कृष्ण कैसे है? राधा भावना भावित है। तो ऐसे कृष्ण एक दिन अचानक श्रीमती राधा रानी का द्वारका में स्मरण करते हैं, स्मरण करने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और किसी के अंदर वो शक्ति या सामर्थ्य नहीं था भगवान की चेतना को वापस लाया जाए। तो उस समय नारद और उद्धव वहां पहुंचते हैं। जैसे ये दोनों वहां आए तो वो ये दोनों समझ गए कि कृष्ण के इस अचेतन होने का क्या कारण है, इन दोनों ने जान लिया। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरी समस्या को मेरे भक्त ही जान सकते हैं। साधवो हृदयो मह्यम साधुनाम हृदयं त्वहम, मैं साधु के हृदय में निवास करता हूं और साधु मेरे हृदय में निवास करता है। तो इस प्रकार से उद्धव और नारद जान गए कि कृष्ण क्यों इस मूर्छित अवस्था में है। तो ऐसे वो सोच ही रहे थे तो उसी समय बलराम का वहां आगमन होता है। बलराम आते हैं और वो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को इस मूर्छित अवस्था से वापस ले आना चाहिए। तो फिर सबने जब चर्चा की तो निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण कैसे अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आ सकते हैं, एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? नारद मुनि यदि अपनी वीणा पर वृंदावन की लीलाओं का गान करेंगे और उस लीलाओं का गान करने मात्र से कृष्ण अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आ सकते हैं। तो सबने सोचा कि नारद आप कृष्ण लीला का गान करो, ब्रज लीलाओं का गान करो, उच्चारण करो। तो नारद मुनि ने कहा मैं तो कर सकता हूं। नारद मुनि बाजाय बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि का कोई और बिजनेस नहीं है, एक ही बिजनेस है, अपने वीणा पर क्या गाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नारद ने कहा मैं तो तैयार हूं, लेकिन आप लोग सोचो जैसे ही मैं गाऊंगा कृष्ण उठेंगे और उठकर एक जगह खड़े नहीं रहेंगे, वो भागेंगे, और भागेंगे तो कहां भागेंगे, वृंदावन की ओर। तो भगवान को इतना विरह था द्वारका में, तो द्वारका में विश्वकर्मा के द्वारा कृष्ण ने एक अद्भुत वृंदावन का निर्माण किया था जिसको कहते हैं नव वृंदावन। जैसे इस्कॉन में भी न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू वृंदावन, न्यू रेमोना, ऐसे कई सारे अलग अलग धाम विदेशों में हैं। जैसे हंगेरी में शिवराम स्वामी महाराज ने नव ब्रज धाम वहां बनाया है, तो वैसे ही द्वारका में भी नव वृंदावन का निर्माण किया और पूरे वृंदावन को यथारूप बसाया गया। लेकिन सारे गोपिकाएं, ग्वाल बाल, सारे वृक्ष, यमुना, सब कुछ वहां था लेकिन मूर्ति के रूप में, और दिखने में सब कुछ वैसे ही। तो कृष्ण जब मूर्छित अवस्था में थे तो कृष्ण को वहां ले जाया गया उस नव वृंदावन में, और नारद मुनि को कहा कि आप गाओ। नारद मुनि ने कहा मैं गाऊंगा तो वृंदावन जाएंगे, और रियल वृंदावन में जाएंगे, क्योंकि इस वृंदावन में देखेंगे अरे सामने तो नंद महाराज, यशोदा, बछड़े सब दिख रहे हैं लेकिन हिलडुल नहीं रहे हैं। तो कृष्ण तो वहां उस वृंदावन की ओर जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उसके लिए एक रथ की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या चाहिए? एक रथ चाहिए जिस पर भगवान कृष्ण बैठेंगे और फिर वृंदावन की ओर चलेंगे। तो वैसे ही फिर दारुक को बुलाया गया, दारुक एक रथ के साथ आ गए जहां कृष्ण मूर्छा में पड़े हुए थे। और फिर तो जब इन सब का चर्चा हो रहा था तब नारद मुनि ने कहा कि वास्तव में, फिर उद्धव कहने लगे कि यदि कृष्ण डायरेक्ट चले जाएंगे और वहां जाकर वृंदावन के भक्तों का वियोग और उनकी इस कठिन दशा को देखेंगे कि वो कितने अधिक दुखी हैं, तो कृष्ण से सहन नहीं होगा, फिर कृष्ण बहुत अत्यधिक दुखी हो जाएंगे, उनको द्वारका वापस लाना बहुत कठिन होगा। इसलिए कोई एक भक्त हो जो पहले संदेश लेके जाए कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण इज कमिंग। तो फिर चारों ने सोचा कि कौन जा सकता है, तो नारद कहते तुम तो सबसे बड़े प्रिय भक्त हो, किसके प्रिय हो, कृष्ण के। नारद ने कहा उद्धव तुम कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि भागवतम में आपका हाथ पकड़कर कृष्ण ने कहा है आत्मयोनिर्ण शंकर, कि कहते हैं न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्ण शंकर। उद्धव को कृष्ण कहते हैं कि ये उद्धव मुझे ये शंकर इतना प्रिय नहीं है, ब्रह्मा इतना प्रिय नहीं है, न संकर्षनो न श्री नैवात्मा। वो कहते हैं मुझे बलराम भी इतना प्रिय नहीं है उद्धव, जितना क्या हो तुम मुझे प्रिय हो। हाँ कहते इसलिए तो तुम्हें वृंदावन भेजा था एक बार। तो उद्धव ने कहा वो बात तो सही है, तो मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं पहले भी वृंदावन जा चुका हूं और जिस मिशन के लिए मुझे भेजा गया था वो मिशन फेल हो गया। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और मैं जाकर यदि उनको कहूं पागल कही कि क्यों रो रहे हो कृष्ण के लिए, तो वो अपराध है। इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने प्रियजनों के लिए रोता है, धन आदि के लिए रोता है, अपना घर सास समान आदि के लिए रोता है, उनको कहे कि मत रो कृष्ण के लिए रो तो वो उचित है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही कृष्ण के लिए रो रहा है उसको जाकर कहो कि अरे मूर्ख क्यों कृष्ण के लिए रो रहे हो, तो महान अपराध है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा, और यदि अभी गया भी, और बल्कि मैं वृंदावन से निकल ही रहा था तो मैंने सारे ब्रजवासियों को हाथ जोड़कर कहा जैसे मैं मथुरा पहुंचूंगा वैसे कृष्ण को तुरंत भेज दूंगा, और अभी मैं यदि गया और उनको बोलूंगा कि कृष्ण आ रहे हैं तो कहेंगे झूठे कही के, हाँ गए तो थे कब से, और बोला था कृष्ण को भेजूंगा, अभी कह रहे हो कि कृष्ण आ रहे हैं, हाँ कैसे मेरे वो वचनों पर वो विश्वास रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो हाथ जोड़ता हूं, मैं वृंदावन ये संदेश लेकर नहीं जा सकता। तो फिर नारद और उन्होंने कहा ये बलराम जा सकते हैं। बलराम ने कहा मुझे भी भेजा था, गया था मैं, 2 महीने की यात्रा में गया था, जब वृंदावन में जाकर मैं 2 महीने रहा और सबके आंसू पोंछे और निकलते समय माता यशोदा के चरणों को पकड़ा और कहा कि मैं मथुरा जाते ही सबसे पहले कुछ काम करूंगा तो कृष्ण को वापस भेजूंगा आपकी ओर। तो कहते कि अभी मेरे पास सामर्थ्य शक्ति नहीं है, हाँ मैं अभी जा नहीं सकता, वो भी मुझे कहेंगे कि आप झूठे हो। इस प्रकार से बलरा उद्धव भी मना करते हैं तो उसी समय सुभद्रा देवी का आगमन होता है। सुभद्रा देवी आती है और कहती हाथ खड़ा करके कि मैं तैयार हूं वृंदावन जाने के लिए, मैं तैयार हूं। और सुभद्रा देवी उनको कहती है कि मैं जाऊंगी वृंदावन और ब्रजवासियों को कहूंगे कि आपके जो प्राण से भी अधिक जिनसे आप प्रेम करते हैं कृष्ण वृंदावन आ रहे हैं, और माता यशोदा के आंसुओं को पोंछूंगे, जाते उनके गोद में बैठूंगे और फिर सारी गोपियों को भी मिलूंगे और गोपियों को कहूंगे कि जो पुरुष होते हैं वो स्वाभाविक रूप से कपटी होते हैं, उनके शब्दों में विश्वास मत करो। हाँ इस कारण से हम सारी स्त्रियां क्या है, बड़ी ही सरल हृदय वाली है, सिंपल हृदय की है, तो मेरे वचनों पर विश्वास कर लेगी सारी गोपिकाएं, इसलिए मैं जाऊंगी वहां और क्या कहूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं, उत्सव मनाना शुरू कीजिए, सब लोग आनंदित हो जाइए। तो इस प्रकार से सुभद्रा देवी तैयार हो जाती है तो इनका जो समस्या है वो समाधान होता है। फिर 3 रथ लाए गए, कितने रथ लाए गए, 3, इसलिए जगन्नाथपुरी में कितने रथ हैं, 3 रथ हैं, 1 रथ में बैठ के नहीं जाते। तो फिर 3 रथ लाए गए तो जगन्नाथपुरी में सर्वप्रथम बलराम निकलते हैं ताल ध्वज पर, फिर सुभद्रा देवी अपना दर्प दलन उनका जो ध्वज ये है रथ है, और फिर भगवान अपने नंदी घोष उनका जो रथ है उस पर निकलते हैं। तो वैसे ही यहां जब अभी सुभद्रा देवी निकलने के लिए तैयार हो गई तो बलराम ने कहा मैं भी 1 रथ में बैठूंगा और मैं भी सुभद्रा की सुरक्षा के लिए आगे आगे चलूंगा। तो फिर बलराम 1 रथ पर बैठे, वो निकले आगे, फिर सुभद्रा देवी बैठी, फिर वो उनके पीछे निकली, और फिर अभी नारद मुनि का समय आ गया, क्या करने का, अपने बिना पर भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने का। तो नारद मुनि तैयार हो गए, दारुक भी रथ में बैठ गए कि अभी कृष्ण कभी भी उठ सकते हैं और भाग सकते हैं वृंदावन की ओर। तो नारद मुनि ने अपनी वीणा का वादन किया और जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नारद मुनि ने ब्रज लीला कहानी ब्रज की ग्लोरीज गाना शुरू की, उसी क्षण कृष्ण खड़े हो गए। अभी आप कोई व्यक्ति सो रहा है मूर्छित है तो खड़े होने में टाइम लग सकता है, या हाथ पर जैसे हम सोकर उठते तो पूरा हाथ ऊपर करके आप फिर आराम से उठते हैं, कृष्ण के साथ ऐसे नहीं हुआ, कृष्ण उठे तो त्रिभंग ललित रूप में उठ गए और वैसे ही खड़े हो गए और कहने लगे मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है। क्योंकि जब कृष्ण निकल रहे थे अक्रूर के साथ तो गोपिकाओं ने उनकी बांसुरी ले ली थी, इसलिए मथुरा और द्वारका में कोई मुरली वादन नहीं है, वो कहाँ है, ब्रज में है, वृंदावन में है। तो ऐसे कृष्ण खड़े होते ही, क्योंकि अभी पूर्ण रूपेण वृंदावन के मूड में है, तो रथ में जब भगवान निकलते हैं जगन्नाथपुरी में तो वो वास्तव में वृंदावन की भावना से आवेशित होते हैं, विशेष रूप से वृंदावन के जो भक्त हैं उनके स्मरण में। तो ऐसे कृष्ण जैसे उठे त्रिभंग टेढ़े रूप में खड़े हो गए और कहने लगे मेरी बांसुरी कहाँ है, बांसुरी कहाँ है। तो उसी प्रकार से उनको बिठा दिया और फिर दारुक को कहा कि आप रथ लेके चलिए। तो भगवान जो उस समय उठकर रथ पर बैठते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं वो पांडु विजय फेस्टिवल है। उस समय इतने अधिक वियोग में थे राधा रानी के कि नारद आदि ने सबको उनको पकड़ पकड़ के क्या कर दिया, रथ के ऊपर बिठाया। और फिर भगवान कृष्ण जगन्नाथ, अभी तो ये नॉर्मल रूप नॉर्मल फॉर्म में है, जैसा फॉर्म है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अभी ये तीनों रथ वृंदावन की ओर निकल रहे थे। और जैसे जैसे ब्रज नजदीक आ रहा था और फाइनली ब्रज में ये पहुंच गए तीनों रथ। जैसे आप यदि इस दृश्य को देखना चाहते हैं तो रथ यात्रा में भाग लीजिए जगन्नाथपुरी में। जब गुंडीचा में भगवान पहुंचते हैं तो वास्तव में लगता है कि ये विशाल विशाल रथ जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठे हैं विराजमान है, और फाइनली सारे भक्त खींच खींच कर उनको गुंडीचा में पहुंचाते हैं, तो इतना विशाल और अद्भुत लगता है। तो वैसे ही ये तीनों रथ जब ब्रज के वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही इन तीनों ने ब्रजवासियों को देखा और देखने मात्र से रथ के ऊपर ही इन तीनों के जो हाथ हैं पांव हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं महाभाव प्रकाश में। और फिर उनकी जो आंखें हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं ब्रजवासियों को देखने मात्र से। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण का यह विशेष प्राकट्य है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में जो सनातन गोस्वामी वर्णित करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते ही रथ यात्रा शुरुआत होने से पूर्व जगन्नाथ मंदिर में केवल ये पांडे विजय फेस्टिवल देखने के लिए जाते थे, और वहां जब वो देख ही रहे थे तो उसी समय फिर भगवान बाहर आकर रथ के ऊपर सवार हो गए। सवार होते ही फिर राजा प्रताप रुद्र निकल पड़े और राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया, एक सेवा को ले लिया जो बहुत तुच्छ सेवा है महान गजपति राजा के लिए। हाँ, इतना महान होकर कृष्णदास कविराज कहते हैं इतने वो उन्नत है लेकिन फिर भी तुच्छ सेवा को स्वीकार करते हैं। तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवान सुवर्ण मार्जनी लया करे पथ सम्मार्जन। तो राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू उठाई और जगन्नाथ की सेवा के लिए झाड़ू मारना शुरू किया, और फिर चंदन मिश्रित जल को लिया पथ पर उसका छिड़काव करने लगे। तो वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र की तुच्छ सेवा के कारण वो योग्य हैं जगन्नाथ की कृपा को पात्र कर कृपा के पात्र हैं। और महाप्रभु गंभीरता से राजा प्रताप रुद्र को देख रहे थे कि वो इतनी तुच्छ सेवा कर रहे हैं इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी। तो चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं, महाप्रभु सुख पायल से सेवा देखिते महाप्रभु कृपा है लस से वाहिते। तो महाप्रभु देखकर प्रताप रुद्र की सेवा को देखकर आनंदित हो गए, सुखी हो गए, और महाप्रभु ने क्या किया उनके ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव किया। तो फिर सारे रथ सजाए गए थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जगन्नाथ का जो रथ है वो वास्तव में सुमेरु पर्वत के भांति लग रहा था, जिस पर कई सारे रेशम वस्त्रों से उनको सजाया गया था, चामर घंटिया पताकाएं सब कुछ लटकाया गया था। और जब ये सारे रथ तैयार हो जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ अभी निकलने के लिए तत्पर होते हैं, और भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जो रथ जो रास्ता था पूरा जो पथ था वो ऐसे लग रहा था सुंदर सुंदर बालों से, और दोनों ओर कई सारे वृक्ष आदि थे जिसके कारण वृंदावन के समान प्रतीत होता हो रहा था। और उसको देखकर भगवान जगन्नाथ को वृंदावन का स्मरण हो आया, और फिर भगवान जगन्नाथ उस रथ पर विराजमान होकर निकल पड़े और आगे जाकर एक स्थान में रुक गए। और रुकने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने सारे भक्तों को एकत्रित किया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही मालाएं ली। सर्वप्रथम उन्होंने परमानंद पुरी को ब्रह्मानंद भारती अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर श्रीवास पंडित इन सबको माला पहनाई, उनको चंदन लगाया, सारे कीर्तन या डिवोटीज को बुलाया, उनको मालाएं महाप्रभु ने पहनाए, चंदन आदि लगाया। और फिर महाप्रभु ने इस रथ यात्रा में कीर्तन जगन्नाथ देव के प्रसन्नता के लिए कैसे होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइज किया। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम चार ग्रुप बनाए, उस चार ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु ने दो दो मृदंग प्लेयर एक एक ग्रुप में रखा, तो इस प्रकार से 8 मृदंग प्लेयर हो गए और चार ग्रुप में एक प्रमुख भक्त डांस करने के लिए रखा। एक ग्रुप में रखा अद्वैताचार्य को, सोचो हम नाचना ही नहीं चाहते, अद्वैताचार्य की आयु के बारे में हम सोचेंगे और वो डांस करने वाले हैं एक ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में है नित्यानंद प्रभु, तीसरे ग्रुप में हरिदास ठाकुर, चौथे ग्रुप में वक्रेश्वर पंडित, ये चार प्रमुख डांसर महाप्रभु ने नियुक्त किए। और फिर महाप्रभु ने कहा एक एक ग्रुप में एक एक सुंदर गाने वाला भक्त होना चाहिए। तो जिस ग्रुप में नित्यानंद प्रभु थे तो महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर तुम कीर्तन करना उस ग्रुप में, और जहां अद्वैत आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास पंडित तुम उस ग्रुप में कीर्तन करना, और जहां हरिदास ठाकुर थे उस ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद की सेवा लगाई कि तुम कीर्तन करना, और जिस जहां वक्रेश्वर पंडित थे वहां चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद घोष को लगाया कि तुम क्या करना वहां उदंड कीर्तन करो। और अकेले अकेले गायक नहीं थे, हर गायक के साथ 5-5 उपगायक थे उनको और थोड़ा सा वो जोड़ देने के लिए। तो इस प्रकार से 24 कीर्तन करने वाले गायक ही थे, फिर कितने सारे मृदंगा प्लेयर थे, और फिर उनका व्रत घेरा बनाने वाले भक्त अलग थे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने ये चार ग्रुप बनाए और ये चारों ग्रुप भगवान जगन्नाथ के सामने हुआ करते थे। महाप्रभु ने कहा अरे चार काफी नहीं है और 3 ग्रुप होने चाहिए, भगवान जगन्नाथ के लेफ्ट में एक और राइट में एक और एक पीछे होना चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु बंगाल के भक्तों को हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि आप सब कहां आ जाओ, जगन्नाथपुरी आना है तो कब आओ, रथ यात्रा में आओ। तो पूरे साल महाप्रभु के पार्षदगण बंगाल में योजना बनाते थे कि इस बार जाना है तो पूरे परिवार के साथ जाना है, और छुट्टी लेना है तो पूरे 4 महीने की, उससे कम नहीं, क्योंकि सारे जाते थे रथ यात्रा में, 4 महीने वहां रहते थे, महाप्रभु का संग लाभ करते थे, रथ यात्रा में भाग लेते थे, और रथ यात्रा जैसे खत्म होती थी दूसरे दिन या तीसरे दिन वो आते थे महाप्रभु के पास और कहते थे हम बंगाल वापस जा रहे हैं, बताइए अभी अगली रथ यात्रा तक हमें क्या करना चाहिए। महाप्रभु 2 चीज हमेशा बोलते थे, क्या कहते थे महाप्रभु, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, ये 2 चीजें आप जाकर करो फिर अगली बार आओ मुझे मिलने जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने और 3 ग्रुप बनाए, बल्कि ये तीनों ग्रुप बंगाल से आए थे। महाप्रभु ने देखा कि कुलीन ग्राम से बहुत सारे भक्त आए हैं जिनमें सत्यराज बसु रामानंद ये 2 प्रमुख भक्त है, उनका एक ग्रुप बनाया, उनको कहा कि आपका एक ग्रुप है कीर्तन करने के लिए। फिर महाप्रभु ने देखा अद्वैत आचार्य ने भी एक अपना पार्टी बनाया था शांतिपुर में कीर्तन पार्टी, और आपने जो पुत्र है अच्युतानंद वो उनके लीडर थे। महाप्रभु ने कहा शांतिपुर से एक जो ग्रुप आया है वो एक और कीर्तन करेगा और अच्युतानंद तुम उसमें नृत्य करोगे। फिर महाप्रभु ने देखा कि और एक ग्रुप आया है श्रीखंड से, जहां नरहरि सरकार और मुकुंद सरकार के पुत्र रघुनंदन ठाकुर वो थे। महाप्रभु ने कहा कि हे रघुनंदन हे नरहरि सरकार आप उसमें नृत्य करोगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 7 मंडलियां बनाए जो कीर्तन करने लगे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, ज्वार ध्वनि सुनि वैष्णव हई ल पागल। तो वहां कृष्णदास कविराज कहते कि इतना तुमुल ध्वनि उस कीर्तन का हो गया कि जितने गौड़िया वैष्णव थे उस रथ यात्रा में सारे पागल हो गए, और ये ऐसे लग रहा था ये सारे वैष्णव कभी कभी एकत्रित आ जाते थे, जैसे कि बादल एकत्रित आ गए हो और बादल गर्जना कर रहे हो, और गर्जना के साथ बादलों से क्या हो रही है, जल की वर्षा हो रही है। इसकी उपमा कृष्णदास कविराज देते हुए हैं, कहते हैं कि उसी प्रकार से उस रथ यात्रा में सारे वैष्णव एकत्रित होते थे बादल के समान और जोर से नाम गर्जन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे। और जैसे वो नाम संकीर्तन का गर्जन या तुमुल ध्वनि उठता था तो सारे भक्तों के आंखों से अश्रुपात होता था, आंसुओं की धारा बहने लगते थे, और फिर महाप्रभु को एक जगह रहना अच्छा नहीं लगता था। महाप्रभु फिर ये अलग अलग पार्टी में जाते थे, अलग अलग ग्रुप में, कभी एक ग्रुप में जाके हरिदास ठाकुर के साथ नृत्य कर रहे, कभी अद्वैत आचार्य के साथ, कभी वक्रेश्वर पंडित के साथ, कभी रघुनंदन के साथ, तो कभी सत्यराज बसु के साथ। तो ऐसे महाप्रभु सातों पार्टी में जाते थे, नाचने लगते थे, और महाप्रभु जाते जैसे घुसते थे उस ग्रुप में सबको बोलते थे हरे हरे, जोर से बोलिए, बहुत कम आवाज है। फिर महाप्रभु उस ग्रुप में घुसते ही हरी हरी कहते थे और फिर दोनों हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ कहा करते थे। तो ऐसे महाप्रभु इन सातों ग्रुप में जाते थे, नाचते थे, और इसको देखकर हर एक भक्त आनंदित हो जाता था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक विशेष लीला को प्रकट किया कि महाप्रभु अभी तो ऐसे था कि एक ग्रुप में गए तो दूसरे ग्रुप में नहीं है, लेकिन अभी क्या किया, महाप्रभु सातों पार्टियों में एक ही साथ चैतन्य महाप्रभु विराजमान हो गए और सातों ग्रुप में महाप्रभु सब भक्तों के संग में नाचने लगे। ऐसे उनकी इस विशेष लीला को केवल जिनके ऊपर उनकी कृपा है वही भक्त ही देख पा रहे थे। तो काशी मिश्र जो राजा प्रताप रुद्र के साथ थे, तो राजा प्रताप रुद्र कहता है कि अरे ये ऐसा जो कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, ये त्रिभुवन में कहां नहीं देखा गया। राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं है कि मैं अपने आंखों से महाप्रभु और उनके पार्षदों को जगन्नाथ देव के सामने नाचते हुए गाते हुए देख रहा हूं। तो काशी मिश्र कहते कि वास्तव में केवल ये इसलिए संभव है क्योंकि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आपके ऊपर कृपा हुई है, आपकी सेवा को देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं, जिसके कारण आप महाप्रभु को सातों दलों में एक ही साथ देख पा रहे हो। तो फिर ये जब नृत्य हुआ, कंटिन्यूअसली हो रहा था, और भगवान जगन्नाथ वहां रुके हुए थे, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को ये कीर्तन देखना बहुत अच्छा लग रहा था। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। अभी जगन्नाथ ने कहा रथ आगे नहीं जाएगा, बस जिसकी मर्जी जैसे मर्जी खींचो, मैं आगे जाने वाला नहीं है। वहां तो चाहे घोड़े लगाओ, हाथी लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो खींचे नहीं जा सकते। कृष्णदास कविराज एक पैर में कहते हैं ये रथ चलता है महा जगन्नाथ की इच्छा से, रुकता है जगन्नाथ की इच्छा से। हाँ, तो जब ये कीर्तन हो रहा था, कीर्तन सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ रुक गए और अपने नेत्रों को बिना झपके, क्या कहते हैं, झपके ना, बिना पलक के, पता है, बिना झपके कंटिन्यूअसली वो देखे जा रहे थे कि किस प्रकार से ये सारे जो गौड़िया वैष्णव है वो नृत्य कर रहे हैं। फिर कृष्णदास कविराज लिखते हैं, अभी यहां तक ये लीला समाप्त नहीं होती, वो कहते हैं आगे सुना जगन्नाथेर गुंडी चगमान, तारा आगे प्रभु करिला नर्तन। वो कहते आगे भी सुनो आप लोग कि ये जगन्नाथ अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे गुंडीचा मंदिर, कि कीर्तन देखते ही वहां ही रह गए। कहते आगे पहुंचे, आगे पहुंचते पहुंचते फिर महाप्रभु ने नृत्य किया और उस महाप्रभु के नृत्य को आप फिर से सुनो। तो जगन्नाथ जी निकलते आगे और चैतन्य महाप्रभु फिर से नृत्य करने लगते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब बहुत उदंड नृत्य कर रहे थे भगवान जगन्नाथ के सामने, तो उनके हृदय में वृंदावन के भावों का आवेश हो गया, और जिसके कारण उन्होंने स्वरूप दामोदर को देखा और दृष्टिपात करते ही स्वरूप दामोदर का कहा गाओ, स्वरूप दामोदर को कहा गाओ। और अभी महाप्रभु ने कहा अभी मैं नाचना चाहता हूं, अभी सब लोग नाच ले सात ग्रुप में, अभी क्या करना चाहता हूं, मैं नृत्य करना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने सातों पार्टियों को बुलाया, सातों को एकत्रित किया, और फिर सोचो सातों एकत्रित होकर एक ही व्यक्ति नाच रहा था, और वो कौन थे, श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कहा स्वरूप दामोदर तुम्हें कीर्तन करना है, और बाकी सात डिवोटीज वहां खड़े थे उनको कहा स्वरूप दामोदर के साथ तुम भी गाओ, सातों को कहा कि उनको हेल्प करो कीर्तन करने में, अभी मुझे नृत्य करना है। फिर महाप्रभु को नाचना है तो सारे भक्त घेरा बनाकर खड़े हो गए। पहला घेरा बनाया था नित्यानंद प्रभु का, नित्यानंद प्रभु का पहला राउंड उनके इर्द गिर्द था। फिर दूसरा घेरा था महाप्रभु के जो सेवक थे काशीश्वर पंडित और गोविंद, और तीसरा जो घेरा था राजा प्रताप रुद्र अपने सेवक हरिचंदन के साथ, और फिर महाप्रभु नाचने लगे। तो महाप्रभु इतना उदंड नृत्य करने लगे मानो जैसे बादलों की गर्जना हो रही है, और महाप्रभु ऐसे घूम रहे हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मानो चक्र घूम रहा हो बहुत तेजी से, और इतना ऊंचा उछल रहे हैं जैसे कि बादलों को महाप्रभु स्पर्श करेंगे, और वहां से उछलकर गिर पड़ते थे, और महाप्रभु नाचते नाचते उनके चरण जब धरती पर पड़ते थे, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जिस धरती पर पर्वत है समंदर है वो धरती महाप्रभु के नृत्य से क्या होने लगी, हिलने लगी, और अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु प्रकट करने लगे। भूमि पर लोटपोट हो जाते थे जैसे कि सुवर्ण का पर्वत गिर गया हो, और फिर महाप्रभु के मुख से फेम निकलना शुरू हो जाता था। एक भक्त था शुभानंद दास, उनका सेवा था, जैसे फेन निकले फेन लेते थे और उस महा फेन को क्या करते थे, खा लेते थे। तो ऐसे महाप्रभु सातों पार्टियों के बीच में नृत्य करने लगे, और फिर अचानक महाप्रभु रुक गए। कृष्णदास कविराज लिखते हैं दंडवत करे प्रभु जुड़े दुई हाथ ऊर्ध्वमुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। फिर महाप्रभु ने दंडवत किया भगवान जगन्नाथ को, और दंडवत करके चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़कर अपना जो मुख है भगवान जगन्नाथ की ओर ऊपर ऐसे उठाया, और उठाकर चैतन्य महाप्रभु ने चार श्लोक बोले स्तुति की, विशेष श्लोक। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण का श्लोक बोला नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि आप वास्तव में ब्राह्मण और उनके हितेशी हैं गौओं के। तो इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण किया। दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर के द्वारा वर्णित है जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा जयति जयति श्याम जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। तो वो प्रार्थना करने लगे कि जयति जयति देवो देव की जन्मवाद। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण आपके जय हो जो आप देवकी के पुत्र कहलाते हो, हे कृष्ण आपके जय हो आपका वृष्णि वंश के प्रदीप हो, हे कृष्ण आपकी जय हो आपका शरीर कमल के समान अत्यधिक कोमल है, हे कृष्ण आपकी जय हो जो आप अवतरित हुए हो पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए और सारे जीवों को मुक्ति देने के लिए। और तीसरा श्लोक महाप्रभु ने गाया जयति जन निवासो देव की जन्म वादो यदुवर परिषद वीरयशेन धर्मं स्थिरजन व्रजेनाग्नसुस्मे श्रीमुखेन
व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्।
तो वहां ये वास्तव में श्रीमद् भागवतम का श्लोक था, जहां कृष्ण कहने लगे या चैतन्य महाप्रभु श्लोक के माध्यम से कहने लगे कि हे कृष्ण, आप जन निवास हैं और सारे जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। आपको कभी कभी देवकी नंदन या यशोनंदन यशोदा नंदन भी कहा जाता है। और आप क्या हो? अत्यधिक बलशाली भुजाओं वाले हो, जो सारे अपवित्र मनुष्यों का वध करने के लिए प्रकट हो गए हो। तो इस प्रकार से और वृंदावन के गोपियों को विशेष रूप से आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन में अवतरित हो गए हो। तो इस प्रकार से महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं। और फिर फाइनली एक श्लोक महाप्रभु ने बोला, नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैशोण शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यो अखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर् गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोला कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी। मैं तो गोपियों के जो एकमात्र भर्ता है श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों के दासों का भी मैं क्या हूँ? दास। इस प्रकार से महाप्रभु बहुत ही विनयशील भावना से ऐसी प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते फिर से चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया। और फिर जैसे महाप्रभु नाचने लगे, महाप्रभु गिर पड़ते थे तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लेते थे। और एक बार जब ये बीच में नृत्य हो रहा था उसी समय, तो पहले घेरे में नित्यानंद प्रभु, दूसरे घेरे में गोविंद, तीसरे घेरे में राजा प्रताप रुद्र। तो राजा प्रताप रुद्र तीसरे घेरे में खड़े होकर देख रहा था महाप्रभु का नृत्य। और महाप्रभु का नृत्य जब वो देख रहे थे, तो राजा प्रताप रुद्र के आगे कौन खड़ा हुआ था? श्रीवास पंडित, पंच तत्व में से एक है, हाँ, श्रीवास ठाकुर। तो वो खड़े थे। तो राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु का यह नृत्य देखना थोड़ा सी बाधा हो रही थे। तो राजा प्रताप रुद्र के साथ उनके सेवक थे हरिचंदन। अभी ये हरिचंदन थोड़ा सा आगे जाते थे और श्रीवास ठाकुर के कंधे में हाथ लगाकर कहते थे, अरे थोड़ा सा इधर हो जाओ, राजा देख रहा है पीछे से। अभी ये तो भावावेश में है, महाप्रभु के भक्त हमेशा भावावेश में रहते हैं। और वो भी महाप्रभु नाच रहे हैं रथ यात्रा के दिन, और कोई उनको ऐसी बाधा पहुंचा है। तो श्रीवास पंडित थोड़ा हो जाते थे, फिर से कंटिन्यूअसली महाप्रभु के नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी यह हरिचंदन को रहा नहीं गया, अरे राजा धीराज गजपति जगन्नाथ का प्रथम सेवक, उसको देखने में कौन खड़ा है, बाधा पहुंचा रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। वो हरिचंदन नहीं जानता था श्रीवास पंडित महाप्रभु के महान पार्षदों में से एक हैं, महान भक्त हैं। यह हरिचंदन गया, थोड़ा सा जोर से उनको ये किया, हटा दिया। अभी श्रीवास पंडित तो पूरी तरह से निमग्न है, 100% से अधिक प्रतिशत उनका ध्यान कहाँ है? महाप्रभु के नृत्य में। और जैसे हरिचंदन ने जोर से उनको इधर थोड़ा सा हिलाया, उन्होंने पीछा नहीं देखा, पीछे उन्होंने अपने हाथ को भेजा, पीछे देखे बिना ही एक जोर से थप्पड़ मार दी। हरिचंदन को जोर से थप्पड़ मारते हैं, चापड़ मारिया तारे कैल निवारण, चापड़ खाया क्रद्ध हैला हरिचंदन। तो उनको निवारण कर दिया चापड़ एक थप्पड़ मारकर। हरिचंदन को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो कुछ बोलने ही वाले थे, तब अपने सेवक हरिचंदन को राजा प्रतापरथ ने पकड़ा, अरे रुक, अभी मत बोलो। तो फिर राजा प्रताप रुद्र एक विशेष उक्ति कहने लगे। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, भाग्यवान भाग्यवान तुम्हें यहाँ हस्त स्पर्श पाइला, हमारा भाग्य नाही तुम्हें कृतार्थ हाइला। तो राजा प्रताप रुद्र ने हरिचंदन को कहा, आपके भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। कि आपको श्रीवास ठाकुर पंच तत्व में से एक है, महाप्रभु के पार्षद, उनके हाथ का स्पर्श, अभी ऐसा स्पर्श कोई उचित नहीं है, इतना इतना मतलब इतना सुखदायी स्पर्श नहीं है। कहते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि ऐसे श्रीवास ठाकुर का स्पर्श मुझे प्राप्त हो जाए। आप कितने भाग्यशाली हो कि श्रीवास ठाकुर का स्पर्श तुम्हें हुआ है और वास्तव में तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो गया है, कृतार्थ कृतार्थ हुआ है। तो ऐसे सारे लोग जगन्नाथ के सामने महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से मग्न थे, और भगवान जगन्नाथ भी अभी पूर्ण रूप से रुक गए थे, और वो जगन्नाथ भगवान अभी पूर्ण रूप से रुक कर वो दर्शन करते जा रहे हैं इस नृत्य का। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के अंदर वृंदावन के भावों का फिर से आवेश हो गया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा कि कुछ गाओ स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर ने एक विशेष श्लोक को गाया, और वास्तव में स्वरूप दामोदर का आज तिरोभाव है। स्वरूप दामोदर वो व्यक्तित्व है जो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानते थे, और वास्तव में दो लोग महाप्रभु के मन की बात जानते हैं, श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम जैन भूतले। तो रूप गोस्वामी एक है जो महाप्रभु के मन के अभिष्ट यानी इच्छा को जानते थे, और दूसरे कौन थे, स्वरूप दामोदर। महाप्रभु को अभी क्या चाहिए, क्या उनके मन में है, वो स्वरूप दामोदर जानते थे, और उसी के अनुपात में उसी के अनुकूल भाव में क्या करते थे, गाते थे कीर्तन। हाँ, एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं यही है, हाँ, कि अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना, जैसे स्वरूप दामोदर कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर ने गाया, स्वरूप दामोदर ने एक पंक्ति गाई, सही तब प्राणनाथ पायनो जहां लागे मदन दहने छुरी गेनो। क्योंकि अभी महाप्रभु जब जगन्नाथ को देख रहे हैं, जगन्नाथ का रथ रुका हुआ है, तो महाप्रभु अभी महाप्रभु के भाव में नहीं है, अभी महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, और वो राधा रानी जो कृष्ण के विरह में इतना लंबे वियोग के बाद अभी देख रही है, किसको देख रही है, रथ के ऊपर कृष्ण को देख रही है, और अभी ये उनका एक दूसरे का देखना है, ये कहां कहां कौन से स्थान को प्रतीत करता है, कुरुक्षेत्र को। तो यहां श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण कहते हैं से महाप्रभु कहते हैं सहित परानाथ पायनो जहां लागे मदन दहने झोरी गेनो। तो वहां महाप्रभु कहने लगे कि आप मुझे अपने जीवन का जो स्वामी है या प्राणनाथ है वो प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मेरा जीवन क्या हो रहा था, सूखा जा रहा था, या कामाग्नि से मेरा हृदय दहन हो रहा था। तो इस प्रकार से महाप्रभु वास्तव में या श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को मिलती है, जो ये रथ यात्रा का प्रसंग है। तो ऐसे भगवान जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा आते हैं, और उसके बाद वृंदावन वासियों को बहुत अधिक वियोग होता है, और उस वियोग में विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी आदि जो डिवोटीज हैं वो अत्यधिक दुखी होते हैं। और फिर एक समय में कृष्ण सोचते हैं कि मुझे अभी कहाँ जाना चाहिए, कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। तो कृष्ण कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं अपने सारे 16,108 रानियों के साथ, और हस्तिनापुर के पांडव आदियों के साथ, कौरव भी थे, सबके साथ सूर्य ग्रहण मनाने के लिए कृष्ण वहां पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र में। वहां ब्रह्म कुंड है जहां स्नान आदि करना, दान देना बहुत लाभप्रद था। तो जब कृष्ण वहां पहुंचे और भगवान ने सबको बोला कि मैं जा रहा हूं वहां, लेकिन वृंदावन वासियों को कोई संदेशा नहीं भेजा, लेकिन वृंदावन वासियों को पता था कि कृष्ण वहां पहुंचने वाले हैं। तो वृंदावन के निवासियों ने सारी तैयारी की, हाँ कृष्ण वहां आएंगे, इसलिए वृंदावन के सारे निवासियों ने बैलगाड़ियों में कृष्ण को जो जो चीजें अच्छी लगती हैं वो सब भरना शुरू किया, दूध मक्खन इवन कंडे, गोबर के कंडे भी, क्योंकि वहां जाकर कृष्ण के लिए कुकिंग करेंगे। और सारी गोपिकाएं, सारे ग्वालबाल सब हजारों की संख्या में इनकी यात्रा, कुरुक्षेत्र की यात्रा में निकल पड़े और यहां ये लोग पहुंच गए थे। कृष्ण तो राज वेश में होते हैं, द्वारकाधीश हैं, तो कृष्ण वहां पहुंचे तो बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा महाराजा कृष्ण और बलराम को मिलने आते थे, उनके सामने झुकते थे। तो उस समय इन सबको मिल ही रहे थे भगवान कृष्ण वहां कुरुक्षेत्र में। तो उस समय किसको एक व्यक्ति आया और उसने कृष्ण के कान में कहा, कृष्णा वृंदावन के वासी नहीं, ऐसे नहीं कहा, कृष्णा आपके माता पिता आ गए हैं। कृष्ण ने सोचा मेरे माता पिता नंद महाराज यशोदा। कृष्ण ने कहा कि सारे मीटिंग्स कैंसल, वहां सारे ऋषि मुनि राजा वगैरह बैठे थे, सबको छोड़ा, बलराम का हाथ पकड़ा, उस टेंट से कृष्ण और बलराम भागने लगे जिस ओर से बैलगाड़ियों में बैठकर ब्रजवासीगण आ रहे थे, उनके यशोदा माता नंद महाराज आदि। और जैसे कृष्ण वहां पहुंचे तो यशोदा माता उतर कर बैलगाड़ी से दौड़ने लगी कृष्ण की ओर, और कृष्ण उनकी गोद में जाकर बैठ गए और कृष्ण जोर जोर से रोने लगे और माता यशोदा इतनी रोने लगी, आचार्यगण कहते हैं कि मानो गंगा नदी बह रही हो, क्योंकि कृष्ण की विरह में यशोदा माता वृंदावन में रोई नहीं, क्योंकि आंसू सारे सूख गए थे विरह में, लेकिन यहां कृष्ण को देखने मात्र से वो रो रहे थे। और कृष्ण को एक प्रकार से अपने आंसुओं से अभिषेक किया, बलराम से मिले, अरे सब मिल ही रहे थे नंद महाराज आदि, और ये देवकी माता भी वहां खड़े थे। देवकी माता ऐसी खड़े होकर यशोदा को इतना प्रेम कृष्ण करता है, हाँ ये मेरे बेटे को लेके तो नहीं जाएगी वृंदावन वापस, ऐसी यशोदा देवकी सोचने लगी। हाँ और फिर ये सारे मिल ही रहे थे तो बेचारी गोपिकाएं दूर खड़ी थी, अभी सारे सीनियर्स वहां थे, तो गोपियों ने सोचा अभी मिलने का समय नहीं है, कैसे हम जाए उनके बीच में कृष्ण को मिलने के लिए। तो रोहिणी माता ने सोचा इन सबको कृष्ण से दूर भेज देती हूँ, देवकी यशोदा वसुदेव नंद महाराज इन सबको दूर भेजा, कृष्ण को एकांत में छोड़ दिया। कृष्ण को एकांत में छोड़ा, सारी गोपिकाएं आए और कृष्ण को उस समय मिलने लगी। कृष्ण को मिलती है और सबसे पहले वो कहती है कृष्ण को कि हे कृष्ण, तुम मत ये कहना कि तुम्हारी माता देवकी है और पिता वसुदेव है, तुम्हारी माता कौन है यशोदा है और तुम्हारे पिता कौन है नंद महाराज है। तुम मत ये सोचना कि तुम एक कोई द्वारकाधीश राजा हो, तुम कौन हो, गव्य चराने वाले एक गोप हो। तो ऐसी गोपिकाएं उनसे बात कर रहे थे और फिर भगवान का वो श्रृंगार करती हैं। गोपिकाएं वृंदावन वेश भगवान को पहनाती हैं, असंख्य फ्लावर्स तुलसी गार्लैंड्स वस्त्र आदि, और फिर भगवान को क्या करती हैं, फिर उनकी चर्चा होती है, वो भी एक लंबा संवाद है। गोपिकाएं कहती हैं कि आप तो हमें धोखा देकर चले गए, आप कभी हमें स्मरण करते ही नहीं होंगे, क्योंकि मथुरा के और नारियां आपको मिली होंगी वहां। तो कृष्ण कहते हैं आपके पास तो आपका दुख बताने के लिए इतने सारे गोपिकाएं हैं, लेकिन मैं तो मथुरा में अकेला हूं, मेरा ऐसा दुख है वो किसी से कहूं, एक ही बार मैंने किसी से शेयर किया था, वो कौन थे, उद्धव थे। हाँ ये उद्धव को कृष्ण कहते, उद्धव मोहे ब्रज विसरतना, हे उद्धव मैं सारी चीजों को भूल सकता हूँ लेकिन ये वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान गोपिकाओं से चर्चा करते हैं और कृष्ण कहते मेरा स्मरण तो तुम अपने मन में ही मुझे स्मरण आदि कर सकती हो। तो इस प्रकार से उनकी चर्चा होती है और फिर सारी गोपिकाएं विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी आदि उनको क्या करते हैं, उस रथ पर बिठा देते हैं। और रथ पर बिठा कर गोपियां जैसे रथ पर बिठाती है उनको, सारी गोपिकाएं उनको खींचने लगती हैं। और गोपिकाओं के हृदय में भाव क्या था, राधा रानी का वो महाप्रभु इसी चैप्टर में
इस जो मध्य लीला का 13वां अध्याय है उसमें फिर वर्णन करते कि क्या भावना प्रदर्शित कर रहे थे महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ के सामने इस श्लोक को उन्होंने उच्चारित किया। और फिर गोपिकाएं भगवान कृष्ण को रथ के ऊपर बिठाती है और वो खींचते हैं, और खींचने में उनका भाव क्या था, कृष्ण लैया ब्रजे जावो, ये भाव अंतर है। कृष्णदास कविराज एक श्लोक में कहते हैं कि उन गोपिकाओं का ये भावना थी कि हम कृष्ण को लेकर वृंदावन चले जाएंगे। वहां श्रीमती राधा रानी कहती है कि ये कृष्ण आप फिर से अपने जो चरण कमल है वृंदावन में प्रकट कीजिए, मोरा मन वृंदावन। कुछ लोगों का मन अलग है और वृंदावन अलग है, लेकिन मेरा मन ही क्या बन गया, अभी वृंदावन है। इसलिए आप आपके चरणों को मेरे मन रूपी वृंदावन में क्या करो, प्रकट करो। और वही प्रार्थना हम करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ देव, हे जगन्नाथ स्वामी, मेरे आंखों के पद से क्या करिए, आप मेरे हृदय में आकर विराजमान होइए। तो ये रथ यात्रा उत्सव कृष्णदास कविराज ने बहुत विशेष रूप से वर्णित किया है। आज के दिन आप उस अध्याय को पढ़ सकते हैं और महाप्रभु के दिव्य लीला को श्रवण कर सकते हैं। और फिर महाप्रभु फिर उस रथ को लेकर आगे पहुंचते हैं, एक स्थान आता है बलगंडी जहां रथ रुकता है, सारे जगन्नाथपुरी के निवासी वो ऑफरिंग करते हैं भगवान जगन्नाथ को, चाहे कोई बिल्डिंग के ऊपर है चाहे गार्डन में है, वहां से भोग लगाते हैं हजारों मात्रा में। फिर भगवान देखते बहुत भीड़ हो गई भोग लगने की, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहते अभी कीर्तन बंद, अभी हम चलते हैं वृक्षों के नीचे, वहां जाकर थोड़ा सा आराम विश्राम करेंगे। फिर महाप्रभु विश्राम करते हैं, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को वैष्णव वेश धोती कुर्ता पहनकर तिलक आदि पहन के भेजते कि जाइए महाप्रभु अभी कृपा करेंगे। तो महाप्रभु लेटे हुए थे वृक्ष के नीचे इस भावना में, ब्रज के और जाकर उनके चरणों को मसाज करते हैं और फिर और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते ही आनंदित होते हैं, प्रताप रुद्र का आलिंगन करते हैं और प्रताप रुद्र के ऊपर अपनी असीम कृपा करते हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु रथ यात्रा का जो उत्सव है उसका आनंद अपने भक्तों को प्रदान करते थे आज के दिन। तो हमें भी रथ यात्रा का स्मरण करना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद की असीम देन है, प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है, और ये रथ यात्रा भी एक महान उत्सव उन्होंने हमें प्रदान किया है जिसके द्वारा हम जगन्नाथ को अपने हृदय में खींच सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।